श्रोताओं, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम सत्य वचन में हम अध्ययन कर रहे हैं लैव व्यवस्था नामक पुस्तक की, जिसमें धार्मिक पर्वों, अनुष्ठानों, शुद्धता की विधियां, नैतिक आचरणों, सातवें वर्ष और जुबली वर्ष से संबंधित नियमों का वर्णन है।
प्रिय मित्र, आपको प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और आज भी प्रतिदिन की तरह परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने लय व्यवस्था की पुस्तक 20 अध्याय में मृत्यु के दंड के बारे में देखा था और आज हम अध्याय 21 में याजकों के निजी जीवन के पवित्रता के नियम का अध्ययन करेंगे। यह 21 और 22 अध्याय में पाया जाता है। आइए हम इसे देखें। प्रिय मित्र, इन अध्यायों का अध्ययन हम इन बिंदु पर करेंगे। याजकों का मानवीय निकट संबंधियों और दोस्तों में अशुद्ध होने से मना किया जाना, याजकीय कार्यों के लिए अयोग्यताएं, बीमार, खानपान और मृतक के द्वारा याजक का अशुद्ध होना और लोगों द्वारा लाए गए बलिदान की जांच पड़ताल करना। प्रिय मित्र, आइए अब हम प्रथम बिंदु, याजकों को मानवीय निकट संबंधियों और दोस्तों में अशुद्ध होने से मना किया गया, इस पर विचार करेंगे। लय व्यवस्था की पुस्तक 21 अध्याय उसके 1-3 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून के पुत्र जो याजक हैं, उनसे कह कि तुम्हारे लोगों में से कोई भी मरे तो उसके कारण तुम में से कोई अपने को अशुद्ध न करे, अपने निकट कुटुंबियों अर्थात अपनी माता व पिता व बेटे व बेटी व भाई के लिए व अपनी कुंवारी बहन जिसका विवाह न हुआ हो, जिनका समीपी संबंध है, उनके लिए वह अपने को अशुद्ध कर सकता है। प्रिय मित्र, मूसा को यह भाग याजकों को बताना है। मृत्यु पाप की सजा है और विचार यह है कि उन्हें पाप से अशुद्ध नहीं होना है। मृतकों से शारीरिक संपर्क उन्हें अशुद्ध करता है। याजक को अपने निकट संबंधियों से अशुद्ध होने की अनुमति है। यहाँ सूची में ये सभी निकट संबंधी हैं और स्वभाव से याजक के निकट हैं। परमेश्वर के याजक होने के नाते उसे दुख और सांत्वना की भावना प्रकट करने की अनुमति देना ही होगा। उसे यीशु मसीह के जैसा होना होगा, जो लाजर के कब्र के पास रोया और हमारे कमजोरियों को समझा। फिर भी दूसरे की मृत्यु पर उसे अशुद्ध होने की अनुमति नहीं थी। वह अपने मन में रो सकता था, लेकिन उससे शारीरिक संपर्क मना था। हम लय व्यवस्था की पुस्तक 21 अध्याय के 4 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, पर याजक होने के नाते से वह अपने लोगों में प्रधान है, इसलिए वह अपने को ऐसा अशुद्ध न करे कि अपवित्र हो जाए। मित्र, जिस पद में वह है उसकी मांग है, वह अपने लोगों के साधारण जन से पूर्णतः अलग रहे। कुछ जगह है जहां मैं नहीं जाता, इसलिए नहीं कि वे जगह गलत हैं, बल्कि इसलिए कि मैं एक अभिषिक्त सेवक हूं और मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे कारण ठोकर खाए। मैं विश्वास करता हूं कि पादरियों, प्राचीनों, सेवकों, संडे स्कूल के शिक्षकों और सभी जो कलीसिया में सेवा करते हैं, बहुत ही सावधान रहना चाहिए कि वे कहां जाते हैं, क्या करते हैं और क्या बोलते हैं। अगर परमेश्वर ने आपको और मुझको जिम्मेदारी पद में रखा है तो वह हमसे इसका लेखा जोखा भी लेगा। लय व्यवस्था की पुस्तक 21 उसके 5 में हम पढ़ते हैं, वे न तो अपने सिर मुड़ाएं और न अपने गाल के बालों को मुड़ाएं और न अपने शरीर चीरें, ऐसा अन्य जाति करते हैं और मृतकों के प्रति अपना दुख प्रकट करने के लिए करते थे। उसके आसपास रहने वाले अन्य जाति के अंधविश्वास के कार्य एक याजक को नहीं करना था। हम लय व्यवस्था 21 उसके 6 पद में आगे पढ़ते हैं, वे अपने परमेश्वर के लिए पवित्र बने रहें और अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र न करें, क्योंकि वे यहोवा के हव्य को जो उनके परमेश्वर का भोजन है चढ़ाया करते हैं, इस कारण वे पवित्र बने रहें। यह शोक प्रकट करना उनके लिए ठीक था जो राजा के पिलाने हारे थे। परमेश्वर के प्रतिनिधि होने के नाते उनका पद इज्जत और नियंत्रण की मांग करता है। कलीसिया में परमेश्वर के प्रतिनिधि के लिए भी यही बात आज लागू होती है, जैसे तीतुस 1 उसके 7-8 पद में लिखा है, क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, न हठी, न क्रोधी, न पियंकर, न मारपीट करने वाला और न नीच कमाई का लोभी, पर पहुनाई करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी और पवित्र जितेंद्रिय हो। हम लय व्यवस्था की पुस्तक 21 उसके 7-8 पद में हम पढ़ते हैं, वे वेश्या का भ्रष्टता को ब्याह न ले और न त्यागी हुई को ब्याह ले, क्योंकि याजक अपने परमेश्वर के लिए पवित्र होता है, इसलिए तू याजक को पवित्र जाना, क्योंकि वह तुम्हारे परमेश्वर का भोजन चढ़ाया करता है, इसलिए वह तेरी दृष्टि में पवित्र ठहरे, क्योंकि मैं यहोवा जो तुमको पवित्र करता हूँ पवित्र हूँ। मित्र, यह उसकी व्यक्तिगत और निजी जीवन की ओर संकेत करता है, और इसमें भी उसके पद के कारण उसे परमेश्वर के पवित्रता को प्रकट करना था। उसे वेश्या, अशुद्ध स्त्री या तलाकशुदा से शादी नहीं करना था। इसका कारण दिया गया है क्योंकि वह परमेश्वर की सेवा करता है, तुम्हारे परमेश्वर के लिए भोजन चढ़ाता है। याजक यीशु मसीह का प्रतिरूप है। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसके 26 और 27 पद के अनुसार विश्वासियों की मंडली को भी, जिसे मसीह का दुल्हन कहा गया है, शुद्ध करना होगा, इससे पहले कि वह दाग और झुर्री रहित उसके सामने उपस्थित किए जाए। इस विशेष विषय में कलीसिया के अगुआ को एक आदर्श बनना है। मैं यहाँ कहूंगा कि मुझे उन स्त्रियों और पुरुषों से बहुत पत्र प्राप्त होती है जो उद्धार प्राप्त करने के पहले तलाकशुदा थे। उनमें से कुछ पुरुष सेवा में आना चाहते हैं और स्त्रियां सेविका बनना चाहती हैं। मैं जानता हूँ कि ये सब बातें सब पर लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ निर्दोष लोगों को उनमें से बहुत उधार पाने के पहले जीवन में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण अनुभव के कारण कलीसिया के पद से वर्जित रखा गया है, और यह अन्याय है क्योंकि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए वे जिम्मेदार नहीं थे। मैं इन लोगों को आगे बढ़ने और सेवकाय या मिशन क्षेत्र जाने की तैयारी के लिए उत्साहित करता हूँ, परंतु मैं उन्हें यह भी चेतावनी देता हूँ कि वे कुछ संत के आलोचना के सामना के लिए तैयार रहें जो सोचते हैं कि वे परमेश्वर की ओर से बोलते हैं, और वे कुछ ऐसे कलीसिया का सामना करेंगे जो उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। फिर भी मैं उन्हें तैयारी के साथ आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करता हूँ, क्योंकि उनके लिए भी जगह है और होगा। हमें पहचानना होगा कि आज बहुत से निर्दोष हैं जो तलाक के शिकार हैं। प्रिय मित्र, दूसरी और बात है जो हमें पहचानना है कि पादरी की पत्नी एक सहायक पादरी नहीं है, वह सिर्फ पादरी की पत्नी है। इसी काम को उसे करना है। उसे अपने पति के पद के प्रति भरोसेमंद होना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि वह पियानो या हारमोनियम बजाए, गीत गाए और कलीसिया के कार्यों की अगुवाई करे। हम लय व्यवस्था 21 अध्याय उसके 9 पद में हम पढ़ते हैं, और यदि याजक की बेटी वेश्या बनकर अपने आप को अपवित्र करे तो वह अपने पिता को अपवित्र ठहराती है, वह आग में जलाई जाए। ऐसा क्यों? उसके पिताजी के पद के कारण। अगर वह अपने पिताजी के पद का अपमान करती है तो उसे कठोरतम सजा मिलनी चाहिए। लय व्यवस्था 21 उसके 10 से 12 पद में हम पढ़ते हैं, और जो अपने भाइयों में महायाजक हो जिसके सिर पर अभिषेक का तेल डाला गया हो और जिसका पवित्र वस्त्रों को पहनने के लिए संस्कार हुआ हो, वह अपने सिर के बाल बिखेरने न दे और न अपने वस्त्र फाड़े, और न वह किसी लोथ के पास जाए, और न अपने पिता व माता के कारण अपने को अशुद्ध करे, और वह पवित्र स्थान से बाहर भी न निकले, और न अपने परमेश्वर के पवित्र स्थान को अपवित्र ठहराए, क्योंकि वह अपने परमेश्वर के अभिषेक का तेल रूपी मुकुट धारण किए हुए है। मैं यहोवा हूँ। यह महायाजक के संबंध में पहला जिक्र है। परमेश्वर के अभिषेक होने के नाते उसे परमेश्वर के लिए अलग होना था। उसे एक मुकुट पहनना था जिसमें ये शब्द लिखे हुए थे, परमेश्वर के पवित्र, जो याद दिलाता है कि वह कौन है, वह किसका है और वह किसकी सेवा करता है। उसे अपना कपड़ा नहीं फाड़ना था। उसे हिंसात्मक नहीं होना था। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय के 65 पद में यीशु मसीह के न्याय के समय यह नियम तोड़ा गया, जब महायाजक ने क्रोध में आकर अपने कपड़ों को फाड़ा था। ना तो महायाजक को अपने माता पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होना था। उस पर अभिषेक का तेल उंडेला गया था और उसे संपूर्ण मन से परमेश्वर के प्रति समर्पित होना था, और अपना पद के कारण उसे पाप से अलग रहना था। प्रभु यीशु के ऊपर भी अभिषेक का तेल उंडेला गया था, और वह पिता की इच्छा यहाँ तक कि क्रूस पर उसकी मृत्यु पूरी करने आया। अपने अनुयायियों से वह ऐसे ही समर्पण की मांग करता है। लय व्यवस्था 21 उसके 13 से 15 पद में हम पढ़ते हैं, और वह कुंवारी ही स्त्री को ब्याहे जो विधवा व त्यागी हुई व भ्रष्ट व वेश्या हो, ऐसी किसी को वह न ब्याहे। वह अपने ही लोगों के बीच में की किसी कुंवारी कन्या को ब्याहे, और वह अपने वीर्य को अपने लोगों में अपवित्र न करे, क्योंकि मैं उसका पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। मित्र, उसकी पत्नी को भी इस पवित्र पद के लायक अपने जीवन को बनाना होगा। उसे वेश्या, अशुद्ध या तलाकशुदा स्त्री से शादी नहीं करना है, अर्थात शादी करना मना था। प्रिय मित्र, आइए अब हम दूसरे बिंदु, याजकीय कार्यों के लिए अयोग्यताओं पर विचार करेंगे। मित्र ध्यान से सुने, मैं कुछ पदों को पढ़ने जा रहा हूँ और इन पदों में याजकीय कार्यों के लिए अयोग्यताओं को सूचीबद्ध किया गया है। इसमें अंधापन, लंगड़ापन, चिपटा नाक, नाटापन, चर्म रोग और विकृतियां तथा धब्य शामिल हैं। लय व्यवस्था 21 अध्याय के 16 से 21 पद में हम पढ़ते हैं, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कह कि तेरे वंश की पीढ़ी पीढ़ी में जिस किसी के कोई भी दोष हो वह अपने परमेश्वर का भोजन चढ़ाने के लिए समीप ना आए। कोई क्यों ना हो जिसमें दोष हो वह समीप ना आए, चाहे वह अंधा हो, चाहे लंगड़ा, चाहे नकचपटा हो, चाहे उसके कुछ अधिक अंग हो, वह उसका पांव व हाथ टूटा हो, वह कुबड़ा व बौना हो, वह उसकी आंख में दोष हो, वह उसके मनुष्य के चाय व खजुली हो, वह उसके अंड पिचके हो, हारून याजक के वंश में से जिस किसी में कोई भी दोष हो वह यहोवा के हव्य चढ़ाने के लिए समीप ना आए। वह जो दोष युक्त है कभी भी अपने परमेश्वर का भोजन चढ़ाने के लिए समीप ना आए। मित्रों, ऐसा क्यों होना चाहिए था जिस प्रकार कोई भी बलिदान नहीं चढ़ाना था, जिसमें किसी प्रकार का कोई कलंक हो, उसी प्रकार कोई भी याजक मेल मिलाप वाले तंबू में सेवा नहीं कर सकता था जिसमें किसी प्रकार का कलंक हो। प्रिय मित्र, बलिदान और बलिदान देने वाला दोनों प्रभु यीशु का प्रतिनिधित्व करते हैं और उसमें कोई दोष नहीं है, न तो उसके व्यक्तित्व में और उसके कार्यों में। प्रभु यीशु मसीह ही एक सिद्ध महायाजक हैं, उसमें कोई भी कलंक या दाग नहीं है, वरन उसमें सुंदरता, महिमा और प्रताप पाया जाता है। लय व्यवस्था 21 अध्याय के 22 और 23 पद में हम पढ़ते हैं, वह अपने परमेश्वर के पवित्र और परम पवित्र दोनों प्रकार के भोजन को खाए, परंतु उसके दोष के कारण वह न तो बीच वाले पर्दे के भीतर आए और न वेदी के समीप, जिससे ऐसा न हो कि वह मेरे पवित्र स्थानों को अपवित्र करे, क्योंकि मैं उनका पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। मित्र, यद्यपि उन्हें परमेश्वर की सेवा से मना किया गया है जिसमें कोई दाग था, उन्हें परमेश्वर के मेज पर आने से मना नहीं किया गया। परमेश्वर ने उनके लिए प्रबंध किया है और यह अन्य जातियों में अयोग्य व्यक्ति के साथ व्यवहार के ठीक विपरीत है। प्रिय मित्र, यहाँ हमारे लिए एक आत्मिक शिक्षा है। ऐसे बहुत से विश्वासी हैं जिन्हें शारीरिक, नैतिक, सामाजिक या आत्मिक असुविधाएं या बाधाएं हैं। ये बाधाएं उनको कलीसिया की कुछ सेवा से वंचित करती हैं। फिर भी ये परमेश्वर के सच्चे संत हैं, जिन्हें विश्वासियों के हर एक अधिकार और सौभाग्य प्राप्त है। प्रिय मित्र, जब मैं सेवा के लिए पढ़ाई कर रहा था, मैंने एक जवान को संडे स्कूल में पढ़ाया जो उस समय जूनियर हाई स्कूल में पढ़ता था। वह एक अच्छा खिलाड़ी था लेकिन वह ठीक से बोल नहीं सकता था। एक दिन वह मेरे पास आया और कहा कि वह एक सेवक होना चाहता है। अब इस तरह के व्यक्ति से आप क्या कहेंगे? मैंने उसे समझाने की कोशिश किया कि वह एक बहुत ही उम्दा खिलाड़ी है लेकिन वह ठीक से बोल नहीं सकता, और मैंने उसे सुझाव दिया कि वह ऐसे मसीह कार्य को ढूंढे जिसमें लोगों से बात करने की जरूरत ना हो। मैं कई सालों तक इस व्यक्ति के संपर्क में रहा। वह कॉलेज में एक फुटबॉल कोच बना। एक सेवक के बराबर या उससे कहीं ज्यादा वह लोगों को यीशु मसीह के बारे में गवाही बताने लगा जो उसके जीवन के द्वारा था। एक खिलाड़ी के रूप में लोग उसकी प्रशंसा करते थे और तब वह अपने टूटे फूटे शब्दों में उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताता था और उसने उनको मसीह के लिए प्रभावित किया। प्रिय मित्र, आइए अब हम तीसरी बिंदु अर्थात बीमारी के खान पान और मृतक द्वारा याजक का अशुद्ध होना पर विचार करें। लय व्यवस्था 22 उसके 1 और 2 पद में हम पढ़ते हैं, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कह कि इसराइलियों की पवित्र की हुई वस्तुओं से जिनको वे मेरे लिए पवित्र करते हैं न्यारे रहें और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र न करें। यहाँ पवित्र और अपवित्र के बीच अलगाव होना था। हारून को मेल मिलाप वाले तंबू से अपने घर में कुछ भी नहीं लाना था। यहाँ पर हमारे लिए एक शिक्षा है कि पवित्र और परमेश्वर के वस्तुओं के साथ हमें साधारण व्यवहार नहीं करना है। तब हम आगे पढ़ते हैं लय व्यवस्था 22 उसके 3 पद में लिखा है, और उनसे कह कि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी मैं तुम्हारे सारे वंश में से जो कोई अपने अशुद्धता की दशा में उन पवित्र की हुई वस्तुओं के पास जाए जिन्हें इसराइली यहोवा के लिए पवित्र करते हैं, वह प्राणी मेरे सामने से नाश किया जाएगा। मैं यहोवा हूँ। मित्र, याजक को असावधानी से अपने काम में नहीं जाना है। परमेश्वर की मांग है कि अगर याजक ऐसा करता है तो उसे याजक कार्य से हटाया जाए। मैं विश्वास करता हूं कि यहां आज के विश्वासियों के लिए उपयोगी बातें हैं। पहला क्रंथियों के पत्र 11 अध्याय उसके 31 और 32 पद में लिखा है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। आगे परमेश्वर यहाँ सभी प्रकार के अशुद्धताओं को गिनता है जो याजक को कार्य करने में अयोग्य बना सकता है। लय व्यवस्था 22 के 4 से 9 पद में हम पढ़ते हैं, हारून के वंश में से कोई क्यों न हो जो कोढ़ी हो वह उसके प्रमेय हो, वह मनुष्य जब तक शुद्ध न हो जाए तब तक पवित्र की हुई वस्तुओं में से कुछ न खाए, और जो लोथ के कारण अशुद्ध हुआ हो वह जिसका वीर्य स्खलित हुआ हो, ऐसे मनुष्य को जो कोई छुए और जो कोई किसी ऐसे रेंगने हारे जंतु को छुए जिससे लोग अशुद्ध हो जाते हैं, वह किसी ऐसे मनुष्य को छुए जिसमें किसी प्रकार की अशुद्धता हो जो उसको भी लग सकती है, तो वह प्राणी जो इनमें से किसी को छुए सांझ तक अशुद्ध ठहरा रहे, और जब तक जल से स्नान न कर ले तब तक पवित्र वस्तुओं में से कुछ न खाए, तब सूर्य अस्त होने पर वह शुद्ध ठहरेगा और तब वह पवित्र वस्तुओं में से खा सकेगा, क्योंकि उसका भोजन वही है। जो जानवर आपसे मरा हो वह पशु से फाड़ा गया हो उसे खाकर वह अपने आप को अशुद्ध न करे, मैं यहोवा हूँ। इसलिए याजक लोग मेरी सौंपी हुई वस्तुओं की रक्षा करें, ऐसा ना हो कि वे उनको अपवित्र करके पाप का भार उठाएं और इसके कारण मर भी जाएं। मैं उनका पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। मित्र, याजकों को पवित्र होना था अपने संबंधों में, उनके सामाजिक संबंध में, उनके व्यापार के संबंध में और संसार के हर एक संबंध में। याजकों को परमेश्वर के लिए अलग किया गया था, उनको दूसरों के लिए आदर्श बनना था। उनमें से कुछ तो वही हैं जो सब इसराइलियों के लिए दिया गया था। याजकों को कोई विशेष सौभाग्य प्राप्त नहीं था। शुद्ध करने की विधि द्वारा साधारण जनता और याजकों को अशुद्धता से दूर करना था। याजक का निजी जीवन अपने कार्य और सेवा के जीवन में एक रूपता होना चाहिए था। हम लय व्यवस्था 22 अध्याय के 10 पद में पढ़ते हैं, पराय कुल का जन किसी पवित्र वस्तु को न खाने पाए, चाहे वह याजक का पाहुन हो वह मजदूर, तो भी वह कोई पवित्र वस्तु न खाए। प्रेमित्र, याजक को मिलाप वाले तंबू के पवित्रता को किसी अपरिचित व्यक्ति को उसमें शामिल न करने के द्वारा बनाए रखना था। केवल परमेश्वर के संतान ही परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। लय व्यवस्था 22 उसके 11 से 13 में हम पढ़ते हैं, यदि याजक किसी प्राणी को रुपया देकर मोल ले तो वह प्राणी उसमें से खा सकता है, और जो याजक के घर में उत्पन्न हुए हों वे भी उसके भोजन में से खाएं, और यदि याजक की बेटी पराय कुल के किसी पुरुष से ब्याही गई हो तो वह भेंट की हुई पवित्र वस्तुओं में से न खाए, यदि याजक की बेटी विधवा व त्यागी हुई हो और उसकी संतान न हो और वह अपनी बाल्यावस्था की रीति के अनुसार अपने पिता के घर में रहती हो तो वह अपने पिता के भोजन में से खाए, पर पराय कुल का कोई उसमें से न खाने पाए। मित्र, ये पद आगे हमें समझाते हैं कि जो याजक के हैं, जो उसके घर में जन्मे हैं, वही पवित्र वस्तु को खा सकते हैं। अगर उसकी बेटी अन्य जाति में शादी की है तो वह इस पवित्र वस्तु की सेवन में शामिल नहीं हो सकती थी। अगर वह विधवा या तलाकशुदा है और अपने पिता के घर वापस रहती है तो वह उसके पिता के पवित्र वस्तु को खा सकती थी। उड़ाव पुत्र या पुत्री घर वापस आ सकती है और उनका अपने घर में स्वागत है। लय व्यवस्था 22 उसके 14 से 16 पद में हम पढ़ते हैं, और यदि कोई मनुष्य किसी पवित्र वस्तु में से कुछ भूल से खाए तो वह उसका पांचवा भाग बढ़ाकर उसे याजक को भर दे, और वे इसराइलियों की पवित्र की हुई वस्तुओं को जिन्हें वे यहोवा के लिए चढ़ाएं अपवित्र न करें, वे उनको अपनी पवित्र वस्तुओं में से खिलाकर उनसे अपराध का दोष न उठवाएं, मैं उनका पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। नियम की अज्ञानता किसी के लिए बहाना नहीं है। मनुष्य जो अनजान में पवित्र वस्तु को खाता है वह दोषी ठहरता है, उसके लिए दंड निर्धारित है। यह याजक पर और जिम्मेदारी डालता है कि वह पवित्र वस्तु की रक्षा करे। अविश्वासी लोग कलीसिया के सदस्य द्वारा कलीसिया की जानकारी प्राप्त करते हैं। बाहर के विश्वासी बेपरवाह और अनादर की बात को तुरंत ताड़ लेते हैं और उनका विचार और व्यवहार उसी के अनुसार होता है। मत्तयी सुसमाचार 18 अध्याय के 7 पद में प्रभु यीशु ने कहा कि ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। प्रिय मित्र, आइए अब हम चौथे बिंदु, लोगों द्वारा लाए गए बलिदानों की जांच पड़ताल पर विचार करें। लय व्यवस्था 22 उसके 17 से 20 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से और इसराइलियों से समझा कर कह कि इसराइल के घराने व इसराइलियों में रहने वाले परदेशियों में से कोई क्यों ना हो जो मन्नत व स्वेच्छा बलि करने के लिए यहोवा को कोई होम बलि चढ़ाए, तो अपने निमित्त ग्रहण योग्य ठहरने के लिए बैलों व भेड़ों व बकरियों में से निर्दोष नर चढ़ाया जाए, जिसमें कोई भी दोष हो उसे न चढ़ाना, क्योंकि वह तुम्हारे निमित्त ग्रहण योग्य न ठहरेगा। मित्र, इस भाग में लोगों के बलिदान लाने के लिए नियम और कानून है, और इन नियमों का याजकों को कड़ाई के साथ लागू करना था। ये नियम लोगों के लिए था, लेकिन उनको लागू करना याजकों का काम था। कोई भी दोषित बलिदान स्वीकार नहीं था, क्योंकि ये बलिदान यीशु मसीह की ओर संकेत करते हैं। इसे हटने का मतलब था यीशु मसीह की व्यक्तित्व की धारणा और परमेश्वर की पवित्र मांग का स्तर नीचे करना था। हम लय व्यवस्था 22 उसके 21 से 28 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, और जो कोई बैलों व भेड़ बकरियों में से विशेष वस्तु संकल्प करने के लिए या स्वेच्छा बलि के लिए यहोवा को मेल बलि चढ़ाए, तो ग्रहण होने के लिए अवश्य है कि वह निर्दोष हो, उसमें कोई भी दोष न हो। जो अंधा व अंग का टूटा व लूला हो व उसमें रसौली व खौरा व खुजली हो, ऐसों को यहोवा के लिए न चढ़ाना, उनको वेदी पर यहोवा के लिए हव्य न चढ़ाना। जिस किसी बैल व भेड़ व बकरे का कोई अंग अधिक व कम हो उसको स्वेच्छा बलि के लिए चढ़ा सकते हो, परंतु मन्नत पूरी करने के लिए वह ग्रहण न होगा। जिसके अंड दबे व कुचले व टूटे व कट गए हो उसको यहोवा के लिए न चढ़ाना, और अपने देश में भी ऐसा काम न करना। फिर इनमें से किसी को तुम अपने परमेश्वर का भोजन जानकर किसी परदेशी से लेकर न चढ़ाओ, क्योंकि उनमें उनका बिगाड़ वर्तमान है, उनमें दोष है, इसलिए वे तुम्हारे निमित्त ग्रहण न होंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, जब बछड़ा व भेड़ व बकरी का बच्चा उत्पन्न हो तो वह 7 दिन तक अपनी माँ के साथ रहे, फिर 8वें दिन से आगे को वह यहोवा के हव्य व्याह चढ़ावे के लिए ग्रहण योग्य ठहरेगा, चाहे गाय चाहे भेड़ी व बकरी हो, उसको और बच्चे को एक ही दिन में बलि न करना। प्रिय मित्र, पशुओं के दोष में प्राकृतिक विकृति के साथ साथ चोट लगना, कटना, टूटी हड्डी सम्मिलित था। उनमें से किसी एक का होना पशुओं को बलिदान करने से इनकार किया जाता था। कोई अजनबी या अन्य व्यक्ति बलिदान नहीं चढ़ा सकता था, और बलिदान के लिए पशु को कम से कम 7 दिन का होना जरूरी था। 7 पूर्णता का प्रतीक है, इसका मतलब है कि वह पूर्ण चक्र जी चुका है। प्रिय मित्र, बिना दोष के पशु बलिदान के इस बिंदु पर इसराइली बुरी तरह असफल हुए थे। वे ऐसे पशु बलिदान करते थे जो टूटे, लंगड़े और बीमार थे, और परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा उनके बलिदानों का इनकार किया। इसे हम मलाकी नबी की पुस्तक 1 अध्याय उसके 6 से 14 पद में भी पढ़ते हैं। आगे हम लय व्यवस्था 22 अध्याय के 29 और 30 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, और जब तुम यहोवा के लिए धन्यवाद का मेल बलि चढ़ाओ तो उसे इसी प्रकार से करना जिससे वह ग्रहण योग्य ठहरे, वह उसी दिन खाया जाए, उसमें से कुछ भी बिहान तक रहने ना पाए, मैं यहोवा हूँ। बलिदान को स्वेच्छा बलिदान होना था। इस प्रकार का बलिदान पिता जो प्रेम में अपने पुत्र को दे दिया, और इब्रानी 12 अध्याय के 2 में लिखित पुत्र जो उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था का प्रतीक होगा। बलिदान को उसी दिन खाना था, इसे भ्रष्ट होने का थोड़ा भी मौका नहीं देना था। हम लय व्यवस्था 22 अध्याय उसके 31 से 33 पद में आगे पढ़ते हैं, और तुम मेरी आज्ञाओं को मानना और उनका पालन करना, मैं यहोवा हूँ, और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र न ठहराना, क्योंकि मैं इसराइलियों के बीच अवश्य ही पवित्र माना जाऊंगा। मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ जो तुमको मिस्र देश से निकाल लाया हूँ, जिससे तुम्हारा परमेश्वर बना रहूं, मैं यहोवा हूँ। मित्र, उन्हें परमेश्वर के लिए गवाही होना था। उन्हें गवाही देने के लिए जगत के अंत तक नहीं जाना था। जैसे मैं और आप बुलाए गए हैं, उन्हें एक राष्ट्र के रूप में परमेश्वर की सेवा करना था, और जैसे वे यह करेंगे पूरा संसार यरूशलेम आएगा। आराधना के हर एक क्रिया परमेश्वर के पवित्र नाम का प्रतिनिधित्व करता है। प्रिय मित्र, उनकी आज्ञा मानने की प्रेरणा का कारण क्या था? डॉक्टर बोनर 5 कारण देते हैं। पहला, मैं प्रभु हूँ। दूसरा, मैं इसराइली की संतान के बीच पवित्र ठहरूंगा। तीसरा, मैं परमेश्वर हूँ जो तुम्हें पवित्र करता हूँ। चौथा, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाया। पांचवा, तुम्हारा परमेश्वर हूँ। प्रिय मित्र, परमेश्वर कहते हैं कि मैं परमेश्वर हूँ जो तुम्हें पवित्र करता हूँ। आज विश्वासियों के लिए स्वतंत्रता है, लेकिन स्वतंत्रता बुराई के लिए आजादी नहीं। परमेश्वर की पवित्रता और धार्मिकता को उत्साह के साथ आराधना के सभी कार्यों में बनाए रखना है। मैं परमेश्वर हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। प्रिय मित्र, परमेश्वर ने आपको बचाया है, परमेश्वर ने आपको अनुग्रह से बचाया है, परमेश्वर ने आपको कामों के अनुसार उधार नहीं दिया है। ऐसा होता तो यह अनुग्रह नहीं होता। मैंने तेरे लिए जीवन दिया, तूने मेरे लिए क्या किया। मैं इस गीत के शब्दों से सहमत नहीं हूँ। अनुग्रह कुछ चुकाने के लिए नहीं कहता है। मुझे आपसे सवाल पूछने दीजिए, क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या आप उसकी सेवा करना चाहते हैं? पत्नी अपने पति के जन्मदिन पर रात्रि भोजन का आयोजन इसलिए नहीं करती है क्योंकि यह उसका काम है। वह इसलिए करती है क्योंकि वह उसे प्रेम करती है, और एक सच्चा विश्वासी परमेश्वर की सेवा करेंगे क्योंकि वह उसे प्रेम करती है, और एक सच्ची विश्वासनी परमेश्वर की सेवा करेगी क्योंकि वह उससे प्रेम करती है। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ जो तुम्हें पवित्र करता है, जो तुम्हें मिस्र देश से बाहर निकाल लाया है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर बनूं। प्रिय मित्र, क्या वह आपका परमेश्वर है? अगर वह है तो आप उसके प्रतिनिधि हैं। संसार आपको पढ़ रहा है। इन पंक्ति को याद करें, सुसमाचार का एक अध्याय हर दिन लिखा जाता है। उन कार्यों के द्वारा जो आप करते हैं और उन शब्दों के द्वारा जो आप बोलते हैं, चाहे सच या झूठ, जो आप कहते हैं वह होता है। कहिए आपके अनुसार सुसमाचार क्या है? लोग आज बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, वे आपको और मुझको पढ़ रहे हैं। प्रिय मित्र, आपके जीवन में लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्या आप इसे जानते हैं? हो सकता है कि आप लोगों को गलत समाचार दे रहे हैं, लेकिन प्रभु आपसे चाहते हैं कि आप उसके सुसमाचार को दें, और इसके लिए आपको पवित्रता का जीवन जीना है ताकि वो पवित्रता लोगों तक पहुंचने पाए। जिस प्रकार से उसने इसराइलियों को यह आदेश दिया, आज वह मुझे और आपको भी देते हैं। मित्र, आइए आज हम निर्णय लें कि हम भी परमेश्वर के लिए पवित्रता का जीवन जिएं, ताकि इसके द्वारा हम परमेश्वर को महिमा दे सकें। आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है, और मैं आशा करता हूँ कि आज के इस वचन के द्वारा आपने अवश्य ही आशीष प्राप्त किया है। प्रभु आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
हमको जलते दीप है यीशु की ज्योति के, हमको जलते दीप है यीशु की ज्योति के। जब तक हम हैं इस जहां अंधियारे डगर पे हो।